हाँ जी
अवधूत
माने बाबाएं होते हैं साधु, कचड़ा वचड़ा भी खाते रहते हैं, अघोरी साधु उनको कहते हैं। कहते हैं सब में भगवान है, कचड़े में भी भगवान है, टट्टी पेशाब में भी भगवान है, और
श्री कृष्ण मट्टी का चाय
है।
श्री कृष्ण मट्टी का चाय तो नाम तो दिखाते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी
है।
श्री कृष्ण मट्टी खाते हैं,
मिट्टी खाते हैं,
ब्रह्मांड दिखाते, उसके मुंह खोलने के लिए जब बोलते ब्रह्मांड दिखाते हैं,
तो माता उनका मुंह खोलती है तो उसमें ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, सारा ब्रह्मांड। हाँ तो
ऐसे पूछ रहे
हैं, ऐसे
इसका रहस्य क्या है पूछ रहा है।
इसका रहस्य यह है कि माता को भी साक्षात्कार होता है, बुद्धि का साक्षात्कार होता है कि मिट्टी नहीं खाते हैं, मिट्टी ये जो मिट्टी है जिसे धरणी कहा जाता है, इसमें सारा संसार समाया हुआ है, पूरा साक्षात्कार कराए देते हैं। और कहते हैं कि शिव बाबा ने विष पिया तो विष जब पिया जाता है तो कंठ तक आ गया, कहीं हृदय तक न पहुंच जाए, क्योंकि हृदय में कौन समाया हुआ है, दिल में कौन समाया हुआ है, अरे दिल वाला बाप समाया हुआ है, तो वहां तक पहुंच गया तो सारा बखेड़ा हो जाएगा, इसलिए कंठ में ही रोक लिया। कंठ में रोकने के कारण जो आवाज निकलती है वो मीठी मीठी आवाज निकलती है या खारी आवाज भी निकलती है, है खारी नहीं निकलती है। कोई के लिए मनुष्य समुद्र खारा और कोई के लिए मीठा, ऐसे कहते हैं ना, समुद्र का जल दो प्रकार का, मीठा भी और खारा भी, खारा किसके लिए और मीठा किसके लिए है। जो आप मीठी मीठी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं हैं उनके लिए मीठा, और जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रह पाते हैं, देवान में रहते हैं, उनके लिए खारा, इसलिए वो कंठ नीला दिखाया गया है। गूंजी विनाश की वाणी, वो वाणी कहाँ से निकलती है, पांव से निकलती है कि नाक से निकलती है, कंठ से निकलती है, विषैली वाणी है। हाँ
बत्रकाली
है,
बत्रकाली
आओ
महाकाल, क्या
भद्र माने कल्याणकारी,
भद्र
हाँ जी, जैसे विनाश कल्याणकारी है तो जो महाकाली कार्य कर रही है उस संसार के विनाश से कल्याण होगा या नहीं होगा,
होगा।
क्योंकि असुरों का विनाश करती है, देवताओं का तो विनाश नहीं करती, तो कल्याण होता है। इसलिए भद्रकाली है, महाकाली इसलिए कि जितनी भी नौ देवियां गाई हुई हैं, उन देवियों के मुकाबले ज्यादा ही काला कर्म करने वाली है, नंबरवार देवी है। कोई महागौरी है तो उनके मुकाबले ये महाकाली है, और बीच में मीडियम। और
बाबा गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना है कहते हैं ना,
है
तो इसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा?
गणेश जी का जन्म कब हुआ है? अरे गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं?
मनाते
हैं। कब?
चौथ
है,
चौथ
को दिन मनाते हैं। तो गणेश है ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की भाषा में गणेश का पार्ट कौन सा है? ब्रह्मा बाबा कभी संपूर्ण बनेगा या नहीं बनेगा? है
बनेगा।
जब संपूर्ण बनेगा तो संपूर्ण चंद्रमा को देखना है या अधूरा चंद्रमा को देखना है? संपूर्ण चंद्रमा को देखना है। उस समय भी अधूरे को देखेंगे तो कलंक लग जाएगा देखने वालों को, जबकि वो है संपूर्ण। तो संपूर्ण को होते हुए भी अधूरे को देखना जरूरी है क्या? नहीं।
दुनिया में तो बीज के दिन देखते
हैं
बाबा, है दुनिया में तो सबसे पहला बीज के दिन देखते हैं, वो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, बीज के दिन देखना अच्छा नहीं।
देखो वो बढ़ने वाला है ना, दूज के बाद तीज, तीज के बाद चौथ, चौथ के बाद पांच, पांच के बाद छह, फिर बढ़ते बढ़ते पूर्ण।
बीज का बहुत श्रेष्ठ मानते हैं
तो पूर्ण है। तो सबसे जास्ती कौन से धर्म में देखते हैं दूज के चंद्रमा को? है हाँ, इस्लाम धर्म वाले देखते हैं। अधूरे चंद्रमा को वो बहुत मानते हैं, अपने झंडे में भी कौन सा लगाते हैं? अधूरा चंद्रमा। संपूर्ण चंद्रमा नहीं लगावेंगे, उन्होंने संपूर्ण चंद्रमा को देखा ही नहीं। किसको देखा है? अधूरे चंद्रमा को देखा तो उनको कलंक लग गया, अधूरे धर्म में चले गए। और
बाबा ये पांच चतुर्थ से शरीर बना हुआ है,
हाँ जी,
वो ऐसे कोई है एक एक जगह में एक एक तत्व समाह हुआ है करके?
एक तत्व में ही पांचों तत्व समाये हुए हैं,
ऐसे कोई निश्चित है नहीं शरीर में ये इसमें
मिक्स नहीं? जो भी शरीर के पांच तत्व हैं, उन पांच तत्वों को संघात कहा जाता है, शरीर मिक्स है। और
देवताओं को सूक्ष्म शरीर होती है?
सूक्ष्म शरीर सभी को होता है, मनुष्यों को भी सूक्ष्म शरीर होता है, जानवरों का भी सूक्ष्म शरीर होता है, देवताओं का भी सूक्ष्म शरीर होता है, परंतु शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर होता है देवताओं का, स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर हो जाए ऐसा नहीं होता, ऐसा उनका होता है जिनके पाप बहुत बढ़ जाते हैं स्थूल शरीर के द्वारा, तो स्थूल शरीर अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है ताकि पापों की वृद्धि न हो सके। और
अंतर्वाक का
स्वप्न में जो इधर उधर दौड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, ये कौन सा शरीर है?
अंतर्वाक।
यही अंतर्वाक शरीर है। और
बाबा रामायण में वशिष्ठ जी ने सात चक्र का वर्णन किया था, बोला था चक्र स्वाधिष्ठान चक्र अमर चक्र मणिपुर चक्र अजन चक्र सहस्र चक्र का, उसका क्या अर्थ है बाबा?
जैसे सप्त ऋषि है, वास्तव में सतयुग और सतयुग आदि के दो नारायणों को मिलाकर के नौ हो जाते हैं, तो ये आठ चक्र मुख्य हैं। आखिरी तो सहस्त्रासार है, सहस्त्र भुजाओं वाला, ऐसे कोई चक्र वक्र है नहीं शरीर में। उन्होंने समझ लिया है कि जो अधिष्ठान चक्र है उसमें कुंडलनी शक्ति सोई हुई पड़ी है, और जो मनुष्य गुरु योग सिखाते हैं उस योग से वो चक्र जागृत होने लगते हैं, वो सोई हुई शक्ति कुंडलनी शक्ति ऊपर चढ़ने लगती है। एक चक्र को भेदा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, आठ चक्र भेदने के बाद संपन्न स्टेज हो जाती है। लेकिन दुनिया में न कोई ऐसा योगी हुआ है और न किसी की ऐसी स्टेज बनी है। ये तो संगम युग की बात है कि आत्मा वो जो नौ हैं जिन्हें नौ नाथ कहा जाता है, उन नौ नाथों की स्टेज को क्रॉस करना, यही उन चक्रों को पार करना है। बाकी कोई चक्र वक्र है नहीं और न कोई पार कर पाता है, न ऐसी कोई कुंडलनी शक्ति है। ये तो एकाग्रता की शक्ति है, जिस एकाग्रता की शक्ति से मनुष्य का रज अथवा वीर्य मस्तक में पहुंचता है, और जब मस्तक में चढ़ने का स्थाई हो जाता है, जैसे रॉकेट छोड़ा जाता है तो पांच तत्वों की दुनिया से पार, पृथ्वी के बाद जो वायुमंडल है उससे भी पार स्पेस में पहुंच जाता है, तो निराधार हो जाता है, फिर पृथ्वी का आकर्षण उसे आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे ही ये आत्मा एकाग्रता की शक्ति से ऐसी ऊंची स्टेज पकड़ लेती है जहां ये प्रकृति के पांच तत्व उसे आकर्षित है नहीं कर सकते। जो विष्णु का रूप दिखाया गया है कहां रहा पड़ा है? क्षीर सागर में, माने ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के सागर में सर्प सर्पणियों की शैया है, और उन सर्प सर्पणियों की विकारियों की शैया के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, उसे कोई भी प्रकार का भय पैदा नहीं हो सकता। वो वेद का सन्यासी है, वो दुनिया में तो हद के सन्यासी है, हद में स्त्री घर बार बाल बच्चों को छोड़ के भागते हैं, जैसे हिस्ट्री में राजाएं भाग खड़े हुए, जो राजाएं बहुत विचारी थे, शंकराचार्य ने आकर के उनको ऐसा ज्ञान सुनाया कि सैकड़ों रानियों को छोड़ छाड़ करके जंगल में भाग खड़े हुए। क्यों? वो विष्णु रूप नहीं बन सकते थे रानियों के साथ, उनके साथ रह करके जीवन नहीं बिता सकते थे, बिता सकते थे। उनको ईश्वरीय ज्ञान मिला है, एकाग्रता की शक्ति उनके अंदर आ सकती थी, नहीं आ सकती। ये एकाग्रता की शक्ति तो सिर्फ शिव बाबा ही योग बल आकर के सिखाता है, और कोई नहीं सिखा सकता। और
रामायण में शबरी है, शबरी
है। हाँ जी, हाँ जी।
अर्थ क्या, शबरी का अर्थ क्या है?
शूद्राणी थी, विभिचारिणी थी, दिखाते हैं उसने भगवान को झूठे बेर खिलाए। वो बेर और कुछ नहीं है, कर्मेंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। उसकी विविचारी इंद्रियां थी, उन्हें विविचारी इंद्रियों का भोग कराया। भगवान तो समर्थ थे, इसलिए उन्होंने वो बेर खाए, सुख भोगा, झूठे बेर खाए। लेकिन लक्ष्मण ने नहीं खाए। क्यों? है? है, इतनी पावर नहीं है दूसरी आत्माओं में। जो विविचार रूपी विष का सेवन कर सके, भगवान की बात अलग है। समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई, तो समर्थ है। सामान्य आत्मा इतनी समर्थ वाली थोड़े ही है कि विष को पी जाए और जिंदा रह जाए। पराई स्त्री और परपुरुष का भोग ही विष है, इसलिए लक्ष्मण ने नहीं खाया, फेंक दिया। समझा? हाँ जी
बाबा। कर्म जाटनी था, खिचड़ा जो भगवान को भोग लगाया तो खाने के लिए बोला ना, उसका क्या रहस्य
है?
वो कर्म और जाटनी का जो कहानी है ना बाबा,
कर्म जागी क्या
जाटनी,
जाटनी जाटनी वो भोग लगाया भगवान को, अब खिचड़ा खाना ही पड़ेगा। वो बाबा परदेश गया ना, तो पीछे यहाँ देख ले बाबा को, तो वो भोग लगाए तो स्वीकार करना पड़ा भगवान को, ऐसे उस तरह से
बाबा तो बताया। तो आज क्या बताया, करनी गोर को क्या देते, पुराने धुराने कपड़े देते हैं या नया कपड़ा देते हैं? तो सतयुग में तो नए कपड़े मिलते हैं, और अभी ये कपड़ा कैसा हो गया शरीर रूपी वस्त्र है, जन्म जन्मांतर का बेविचार से सना सनाया हो गया। और
बाबा राजस्थान में वो रुनीसा रामदेव का जो इतना यात्री जो चल बहुत है, जो नाक रग रग के 500 किलोमीटर जाते हैं, उसका
रहस्य
क्या है?
हाँ, ऐसी बहुत सी आत्माएं निकलेंगी जो सहज सहज भगवान को नहीं प्राप्त कर सकेंगी, बहुत उनको नाक रगड़ना पड़ेगा, तब प्राप्ति होगी। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में चल रही है।
शिव बाबा को मौनी बाबा बोलना है।
हाँ जी,
मौनी
मौनी माने मौन रहने वाला।
हाँ मौनी
है,
महामौनी।
हाँ मौनी,
महामौनी।
हाँ महामौनी, महामुनि, महामुनि कह रहे हैं या महामौनी कह रहे? मौनी मौन कहते हैं, मौन रहने वाला, चुप रहने वाला। एक होता है कर्मणा से सेवा करना, कर्मेंद्रियों से सेवा करना, उससे ऊंची सेवा है वाचा से सेवा करना, और उससे भी ऊंची सेवा है वाचा बंद मनसा से सेवा करना। जो मनसा सेवा में एक्सपर्ट हो जाएंगे उनको बोलने की दरकार नहीं है। जो बोला है मुरली में, अव्यक्तवाणी में, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उनके मुंह से अनायास निकल पड़े कि जो पाना था सो पा लिया, मेरा बाबा मुझे मिल गया, भगवान आ गया, भगवान मिल गया, उसमें बोलने की दरकार ही नहीं। इसलिए बोला है तुम बच्चों की नंबरवार अव्यक्त स्टेज ही भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। तो अव्वल नंबर में भी कोई होगा ना अव्यक्त स्टेज बनाने वाला, जो होगा वो ही सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का अव्वल नंबर धर्म पिता साबित हो जाएगा। और धर्म पिताएं तो नंबरवार बाद में आते हैं, जिसे अल्लाह अव्वल दीन गाया जाता है। अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, अव्वल माने पहला, पहले नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन करने वाला। और हाँ जी,
जब वो कंचन काया कहते हैं, कंचन काया,
हाँ,
ये बाल भी कंचन है ना, वो भी कंचन हो जाता है।
कंचन काया का मतलब शरीर सोने का नहीं हो जाएगा। सोने में जैसे सच्चे सोने में कोई भी खाद नहीं होती है, ऐसे इस शरीर में कोई भी प्रकार का किचड़ा या विकार नहीं होगा, कोई भी प्रकार की विकृति नहीं होगी, एकदम सात्विक सत्व प्रधान। त्रेता में जाएंगे तो दो कलाएं कम हो गई, माने कुछ न कुछ ज्ञान इंद्रियों से कचरा पड़ गया, इसलिए दो कलाएं कम हो गई। और
बाबा ईश्वर का
अर्थ क्या है?
ईश्वर
त्रिपुर,
त्रिशूल,
त्रिशूल,
त्रिशूल, त्रिपुर,
त्रिशूल, त्रि माने तीन, शूर माने शूरवीर, शूर माने शूरवीर, त्रिशूल माने तीन शूरवीर। कौन? विश्व विजय करके दिखलावे। ऐसे तो दुनिया में बहुत हुए महत्वाकांक्षी, जिन्होंने ये महत्वा लेकर महत्वाकांक्षा लेकर के सारी दुनिया पर विजय का झंडा लहराने के लिए आक्रमण किए, नेपोलियन, मुसोलिनी वगैरह, बहुत कुछ ऐसे हुए, परंतु सारी दुनिया पर कोई ने विजय नहीं पाई। भले बड़े बड़े सूरवीर गाए गए लेकिन सब फेल हो गए विश्व विजय के मामले में। सारे विश्व पर विजय पाने वाले तीन ही सूरवीर गाए जाते हैं, जो अपनी भारतीय परंपरा में तीन शेरों की लाट दिखाई जाती है। नोटों पर आज भी उन तीन शेरों का चित्र दिखाया जाता है। इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले ये तीन नंबर वार शेर है, जो शूरवीर है, जिनकी यादगार है त्रिशूर।
त्रिशूल का अर्थ पूछा
है,
भाई ने त्रिशूल का अर्थ पूछा।
त्रिशूला,
त्रिशूला,
शूल माने कांटा, शूल माने कांटा, बाण, तीन प्रकार के बाण, ब्रह्मा का बाण, स्थापना करने वाले ज्ञान बाण, ब्रह्मा का बाण, विष्णु का बाण, पालना करने वाले बाण, कैसे पालना की जाए जो एक भी न टूटे, नहीं तो पालना करते हैं, खराब पालना करते हैं तो बच्चे मर जाते हैं ना, मरते हैं कि नहीं,
मरते हैं।
लेकिन ऐसी विष्णु ने पालना की कि संसार का वर्धन तो हुआ, टूटने वाली नहीं, कितना वर्धन हुआ, कितने से लेकर के कहां तक का वर्धन करते रहे, वो पत्ते झड़ते नहीं है झाड़ के, उनका वर्धन होता रहता है, बढ़ते रहते हैं, कितने से कितने हो जाते हैं, है? अरे शुरुआत कितने से, आठ से लेकर के 4.5 लाख तक, उसके बाद तो विनाश हो जाता है, सभी जिंदा रहते हैं, ऐसी पालना, ऐसे पालना के ज्ञान रत्न जो विष्णु के पास है, औरों के पास इतने नहीं, फिर शंकर द्वारा विनाश, गूंजी विनाश की वाणी है, विनाश की वाणी फिर भी है बहुत कल्याणी, इतना कल्याण और कोई भी धर्म पिता ने नहीं करके दिखाया, ऐसी विनाश की वाणी, कोई भी धर्म पिता में इतना साहस नहीं था, जो पुराने पुराने चले आ रहे धर्मों के धारणाओं की खामियां निकाल करके उनका नाश कर सके, पुरानी परंपराओं का नाश कर सके, क्योंकि सब डरपोक थे, अगर पुराने पुराने धर्म गुरुओं का बिना विरोध करें, अरे विरोध न करने के बावजूद भी उनको मार दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया, तो फिर विरोध करते तो क्या हाल होता, वो एक ही है जो ऐसी युक्ति के ज्ञान रतन चलाता है, ज्ञान बाण छोड़ता है कि सारी दुनिया से असुरों का सफाया हो जाता है। ये तीन बाण हैं, ब्रह्मा का बाण, विष्णु का बाण कहो शूल कहो, शंकर का बाण कहो शूल कहो, और है क्या चीज,
भरतनाट्य
है, बड़क कहते हैं वो तो, वो तो बड़क नाथेश्वर कहते हैं। अरे इनकी कथा कहानी तो बताओ,
बड़क मैंने तोड़ फोड़ करने वाला
नाथेश्वर त्रिशूर पे ही, ये बड़क नाथेश्वर त्रिशूर में है,
त्रिशूर में है, क्या करता है उसकी कथा कहानी हमें तो मालूम नहीं, बताओ, अरे बताओ तो, अरे बड़कनाथेश्वर बड़कनाथेश्वर बताते कुछ भी नहीं,
ईश्वर के काटा,
हाँ ईश्वर तो है,
ईश्वर के काटा मालूम नहीं बाबा,
हैं
देखता है, देखकर देखकर क्या है,
क्या देखता है,
ईश्वर में,
ईश्वर को देखता है, कौन है ईश्वर?
बेहद दिन ईश्वर देखता देखता है,
देखता है,
अपना देखता है कि बेहद दिन ईश्वर क्या करता है,
क्या करता है?
वड़कन आते ईश्वर बेहद दिन आता क्या है?
अरे वड़कन आते ईश्वर क्या करता है?
राष्ट्रपति है,
राष्ट्रपति
केरल में
है,
केरल में वड़कनाथेश्वर है।
हाँ हो गया, हाँ ये भी जान लिया कि आप केरल से आए, त्रिशूर से आए, लेकिन ये वड़कनाथेश्वर के बारे में कुछ हिस्ट्री तो बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ, उन्होंने आकर के क्या किया? अरे कुछ किया कि नहीं किया? ऐसे ही आया आराम गया आराम हो गया। अच्छा फिर से देखना। हाँ
याद करने से पापों पसंद
है,
याद करने से पापों पसंद होता है।
हाँ जी,
फ्यूचर में उनकी मिलता
है। हाँ
मगर अब क्या फायदा होता है?
याद करने से क्या फायदा होता है?
अब
है
अभी
अभी बाबा कहते अभी का जो तुम सुख और दुख भोगते हो ये तो तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है, इसमें कुछ इजाफा नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी याद नहीं कर सकती। मेरी याद का अगर फल लेना है तो वो भविष्य के जन्मों के लिए है, वर्तमान में अगर ले लेंगे तो भविष्य का कट हो जाएगा, और वो भी वर्तमान में तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारी याद परिपक्व हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, नहीं तो अभी तुम्हारी याद तो तिरकनी है या एकाग्रता की याद है, तो अभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बाबा तो कहते हैं याद से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी याद से कोई की बीमारियां ठीक हो रही हैं? है नहीं ठीक हो रही, क्योंकि वो पावर नहीं आई है अभी जो आनी चाहिए। पहले तो तीन मूर्तियों में वो पावर आनी चाहिए, तीन मूर्तियों का मेल एक मूर्ति में दिखाई पड़ना चाहिए, वो एक मूर्ति ऐसी परिपक्व स्टेज में आए। पहले अपने शरीर के पांच तत्वों को, पांच वो जो रोग हैं उनको मिटा सके, इसलिए बोला ये जो पुरुषार्थ तुम करते हो वो इस जन्म के लिए नहीं करते हो, कब के लिए करते हो? भविष्य के जन्मों की प्राप्ति के लिए करते हो। इस जन्म में जो तुम्हें सुख मिलता है या दुख मिलता है ये सुख दुख पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार तुमको भोगना ही पड़ेगा, इसमें बाबा हस्तक्षेप नहीं करता। और
बाबा 21 तारीख को मोट आबू में गुजार दादी के सैदना आत्मा आके माताओं की बहुत महिमा की।
हाँ जी, हाँ जी,
माताएं कितना मंदन होते रहती है, भाग भाग के आ गई, कितना इन्वेस्टमेंट अच्छा निकालती है माताएं, तो कोई नहीं निकाल सकते ऐसे बहुत सुनते
हैं
जी बाबा। तो ऐसे यहाँ भी बहुत माता है, मंदन वाली माता है, आई है निकालते इन्वेस्टमेंट।
हाँ जी,
तो ये बहुत खुशी की बात है।
हाँ जी, हाँ जी,
आपसे भी।
और
बाबा विजय विहार है ना दिल्ली में, तो विजय विहार के बेहद के अर्थ विजय होगा और विपरीत की हार होगा, ये सही है या गलत है?
हार विहार भी कहते हैं, विहार कहते हैं विचरण करने को। स्वर्ग में कौन विहार करते हैं? कहते हैं देवताएं स्वर्ग में विहार करते हैं। विहार करना माने आना जाना रहना सहन सहन करना, ये सारा आजा आहार विहार है। आहार खाने पीने को कहते हैं, विहार इधर उधर आने जाने को कहा जाता है। तो उस अर्थ में जास्ती लिया जाता है विहार शब्द। और अगर ये कहें कि वे माने विपरीत और हार माने हार, तो विपरीत हार हो गई। हार के विपरीत क्या होता है? जय, विजय। तो एक विजय पहले लगाया और बाद में दूसरा विजय लगा दिया, तो डबल विजय हो गई है। ये थोड़े कहेंगे कि वेद विपरीत की हार। और
परशुराम जी ने गणेश जी का आधा दांत तोड़ देते
हैं
ना? है परशुराम जी
हाँ
गणेश जी का आधा दांत तोड़ देते हैं।
हाँ जी,
उसका बेहद का क्या
दांत से क्या किया जाता है? हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के। और तो उन्होंने दिखावे का दांत तोड़ा या असली दांत तोड़े? दिखावे वाला दांत तोड़ा। पूरा थोड़ा ही तोड़ा, अधूरा तोड़ा या पूरा तोड़ा? अधूरा तोड़ा। दिखावा करना जरूरी है? है नहीं। गणेश जी का पार्ट है किसका? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट है वो दिखावे का पार्ट है या सामान्य पार्ट है? हाँ? दिखावे का पार्ट है। उनको जो फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस हैं, कृष्ण की आत्मा को जो फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस हैं, उनका पार्ट कैसा है? है? उनका भी दिखावे का पार्ट। हाँ, तो कुछ तो अंतर रहे उन क्रिश्चियंस में और इनमें, तो आधा दांत तोड़ दिया। और जोर से बोलो।
आदि में
हाँ
वैसे
इतना धीरे धीरे बोल रहे
दीदी को सुनाया था ना, और सुनने और सुनाने का समय पर शुभ।
आप कन्नड़ में बोल जाइए।
देखने के आधे में बाबा
हाँ,
जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था
हाँ,
तो उसने उस साक्षात्कार को उसके दीदी को बोला, बड़ा दीदी को बोला।
हाँ,
एक समय ये कैसे हुआ?
सुनने और सुनाने का पार्ट में बोला है, मुरली में बोला है, एक ही टाइम पर होता है, ऐसा कैसे होता है?
तो वो पूछ रहा है कि एक ही टाइम में सुनना सुनाना और समझना
समझाना
हुआ है ना। हाँ, तो मुरली में बोला है कि
एक ही टाइम में
बाबा कैसे होता है?
कोई भी बात कही जाए या सुनाई जाए, जैसे मान लो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार ही कोई माता ने सुनाया प्रजापिता को, तो जब साक्षात्कार सुनाया और सुनाने के साथ ही साथ उसने सुना भी कि नहीं?
सुना।
और सुनने के साथ साथ बुद्धि उसे समझ सकती है या नहीं?
समझ
सकती है। तो तीनों काम इकट्ठे हो गए, सुनना भी हुआ है,
सुनाना भी हुआ।
नहीं, सुनना भी हुआ और समझना भी हुआ और समझाया भी, तीनों कार्य इकट्ठे हो गए। और
बाबा जो बाबा जो दृष्टि देता है ना, बाबा जो दृष्टि देता है, दृष्टि वही अलौकिक का दर्शन है ना बाबा?
Thank you. बाबा दृष्टि देता है, कौन सा बाबा दृष्टि देता है? है हाँ, अगर बुद्धि में है दृष्टि लेने वाले के कि हम शिव बाबा से दृष्टि ले रहे हैं तो कल्याण है। अगर देहधारी से दृष्टि ले रहे हैं तो क्या होगा? अकल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा से दृष्टि ले रहे हैं तो अकल्याण होगा। ब्रह्मा में प्रवेश करने वाला शिव दृष्टि दे रहा है तो कल्याण होगा। ब्रह्मा की गोद में गए हैं तो अकल्याण होगा। ब्रह्मा की गोद में हमें ब्रह्मा की गोद अनुभव नहीं हुई, शिव बाबा की गोद अनुभव हुई तो कल्याण है। तो अपनी अपनी भावना की बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भावना प्रधान है। जैसी जैसी भावना होती है वैसी प्राप्ति होती है। और हाँ, केरला का वार्तालाप, हाँ सुनाओ।
ये आप सुनाया वैमश्रत मनु, बाद में बोलेंगे
हैं?
बाद में बोलेंगे, ऐसे बोला वैमश्रत
मनु।
वैमश्रत मनु
हाँ,
बाद में बोलेगा, अभी बोल सकता है।
ऐसा क्लैरिफिकेशन में आया? कुछ गलत तो नहीं समझ लिया है?
कोई कोई बात उसी समय नहीं बताई जाती है, बाद में बताई जाती है, ऐसे बताया होगा।
गड़बड़ हो जाता है ना, फिर सुनी सुनाई बात बाद में सुनाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्सरिटी हो जाती है।
वो तो इसी दिन हम सुने
हैं,
इसी दिन हम सुने।
आपने सुना है
इसी दिन?
हाँ, जो सुना है उसको हमको भी सुनाओ अगले बार। अच्छा हाँ, छोटा छोटा भी डीवीडी आता है तो डीवीडी में डाल करके हमको भी सुनाना। हाँ, नहीं तो टेप रिकॉर्डर में सुना देना। हाँ
बाबा, तीनों मूर्तियों में एकाग्रता कब आएंगे?
तीनों मूर्तियों में
एकाग्रता कब आएंगे?
अरे महाशिवरात्रि होगी कि नहीं होगी? है?
होगी।
जब महाशिवरात्रि होगी तो कृष्ण वाली आत्मा शिव बाबा को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी?
पहचानेगी।
है? पहचानेगी ना। और जो दो मूर्तियां हैं नारायण और लक्ष्मी, वो दोनों मूर्तियां अष्टदेवों में होंगी या नहीं होंगी?
होंगी।
तो तीनों मूर्तियों ने पहचाना या नहीं पहचाना शिव बाबा को?
पहचान लिया
है।
पहचान लिया।
कौन से तन के द्वारा?
क्या बाबा?
कौन से तन के द्वारा पहचाना?
संगम युग
है।
संगम युग?
संगम युग नहीं पूछ रहे, कौन सा तन?
संगम युग इसके शरीर में,
शरीर नारायण वाले शरीर।
हाँ, नारायण वाले शरीर के द्वारा पहचान लिया। और पहचानना अलग बात है और पहचानने के बाद पुरुषार्थ पूरा करना अलग बात है। पहले पहचानेगा या पहले पुरुषार्थ पूरा होगा या दोनों साथ साथ होंगे?
पहले पहचानना,
पहचानने के बाद फिर याद करना, फिर पुरुषार्थ पूरा हो। तो इसलिए चंद्रवंश की संपूर्णता से लेकर के सूर्यवंश की संपूर्णता तक कितना अंतराल बताया टाइम का है?
40 से 50।
हाँ, कितना अंतराल, कितने साल का हुआ?
10 साल
का अंतराल हुआ। 10 साल जो लगेंगे वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को संपन्न बनने में लगेंगे, तब कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हुई। पूरी राजधानी स्थापन हो जाए फिर जोर शोर से विनाश शुरू हो, तब तक छुटपुट विनाश होता रहेगा, लोग रोंगटे खड़े होते रहेंगे। लास्ट में जब और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स निकलेंगे तो जोर से विनाश शुरू होने लगेगा। अगले 10 सालों में सारा काम पूरा होना है, सभी धर्मों की स्थापना का शूटिंग हो जाएगी। और
बाबा एक गीत गाओ, 1 मिनट का
है,
1 मिनट का एक गीत गाओ बाबा।
हाँ।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली।
ये कौन गा रहा है?
कौन गा रहा है? यही तो बुक में मैं पढ़ा बाबा।
अरे ये जो भावना छोड़ रहा है, जो वाइब्रेशन छोड़ रहा है, जो गीत में गाए हैं, ये वाइब्रेशन कौन छोड़ रहा है, कौन गा रहा है?
ये राम वाली आत्मा गा रहा है।
राम वाली आत्मा भगवान है,
शिव बाबा।
हाँ, शिव बाबा करनी गौर ब्राह्मण बन के आया है, वो कह रहा है।
डोल उठी है धरती देख रहे, डोला गगन है।
हाँ, अब तो भर दे झोली,
जगत का पालन हारा है।
हाँ।
तू कर ले जरा पहचान, मैं हूँ आज तेरा मेहमान, भगत भर दे।
आज मेहमान है, कल नहीं रहेगा, वापस चला जाएगा सबको लेकर के। और
हमने देखा, हमने पाया।
हाँ।
शिव भोला भगवान।
हाँ।
नेता कितना प्यारा।
हाँ। शिव भोला भगवान, और हमने भूला, हमने छोड़ा शिव भोला, तो वो किसने गाया?
माउंट आबू में।
वो माउंट आबू में गाया, यहाँ नहीं गाया।
नहीं पाया तो भी गाते हैं,
है?
तो भी गाते नहीं
है?
वहाँ नहीं पाया तो भी गाते हैं।
हाँ।
यहाँ पा लिया तो भी गाते नहीं। पा लिया तो गाने की जरूरत ही नहीं है।
वो कहेंगे हमने ब्रह्मा के तन में पाया ना, तुमने थोड़ा ही पाया, ब्रह्मा की गोद का सुख हमने लिया, तुमने थोड़ा ही लिया। तो बात सच्ची है या झूठी है? अरे सच्ची है, है?
अभी एडवांस में ज्यादा
पीछे
है,
69 पीछे।
हाँ
सच्ची है, आज मैं 76 में देखा शिव बाबा।
हाँ देखा है, देखा। फिर अंदर अंदर क्या होता है? सदा काल की या कभी कभी की? लफड़ा है। और
बाबा जब बच्चे जब पैदा होता है।
हाँ।
वो मन बुद्धि से काले रहता है,
हैं?
भी मुस्कुराता रहता है, ऐसे क्यों?
वो पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है, सूक्ष्म शरीर से कभी मुस्कुराता ही थोड़ा ही, कभी रोता भी है, कभी रोता है, कभी हंसता है। अच्छी स्मृतियां आती है तो हंसता है, खराब स्मृतियों में आ जाता है तो रोने लगता है। और
बाबा।
हाँ।
पूर्व में भारत का नक्शा दिखाता है ना।
हाँ।
तो भारत से लंका दूर है स्थूल में।
हाँ।
तो बेहद में भी लंका माने रावण राज्य है ना।
हाँ जी।
तो बेहद बेहद के भारत से रावण राज्य दूर है, इसके यादगार में स्थूल में भी वही से है क्या बाबा?
हैं?
बेहद के भारत से रावण राज्य दूर है,
हाँ जी,
इसके यादगार में स्थूल में भी वैसा हुआ है क्या बाबा?
सुन,
इसके यादगार में स्थूल के भारत और स्थूल के लंका भी दूर है क्या?
हाँ, हाँ वो बेट है, चारों तरफ समंदर है, ये सारी दुनिया में चारों तरफ समंदर है, जितने भी विदेश हैं, वो चारों तरफ समंदर से घिरे हुए हैं। और बोलो बोलो
बाबा,
शिव बाबा का डायरेक्शन है,
डायरेक्शन ले लो, ब्रह्मा बाबा का फॉलो करो,
ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। हाँ,
तो ब्रह्मा बाबा तो सहनशीलता का देवी है, ऐसा पाठ बताया।
हाँ
बताया, तो हमारे जीवन में जैसा लौकिक परिवार और अज्ञानी परिवार भी आता है,
माने ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार नहीं था?
लौकिक परिवार था, लेकिन हमारे से हम ज्यादा सहन करने से उनका विकर्म ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हमारा पाप का विकर्म का खाता नहीं बढ़ेगा।
क्यों बढ़ेगा? ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार था कि नहीं? ब्रह्मा बाबा ने लौकिक परिवार में जो लड़के ज्ञान में नहीं चल रहे थे उनके साथ सहन किया या उनका सामना करके निकाल दिया? तो फिर उनका पाप बढ़ गया?
नहीं बढ़ा।
फिर
सहन करना मतलब वो नहीं,
कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है वो भी तो देखना है। ब्राह्मण परिवार में सहन करना है और बाहर की दुनिया में जो ब्राह्मण परिवार के नहीं बने हैं उनका मुकाबला करना है। क्यों बोला मुरली में? लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। नहीं पूछेंगे, नहीं उनकी मत पर चलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा?
झगड़ा बढ़ेगा, फिर प्रभु का निंदा नहीं होगा जी बाप?
क्यों, दुनिया में प्रभु की निंदा नहीं हुई जब उन्होंने बच्चों को एक पैसा भी नहीं दिया? दुनिया वालों ने निंदा करने से छोड़ दिया है? अरे छोड़ दिया क्या? छोड़ा नहीं, छोड़ा ना, निंदा की ना, तो बाबा ने परवाह की उनकी?
नहीं।
अरे परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो किसी की क्या परवाह? जरूरी है किसी की परवाह करना? है अपने अंदर कमजोरी भरी हुई है विकारों की पूर्ति करने के लिए, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा छूट जाएगा, मोह विकार की पूर्ति नहीं हो रही है। माताओं के लिए खास ये विकार विरोध में आता है,
लेकिन माताओं में किसी का दर्द भी देख नहीं सकते ना, तो
किसी का दर्द नहीं देख सकते तो दुनिया का दर्द देख सकते हैं? दुनिया में दर्द नहीं दिखाई पड़ता है माताओं को, तो जगत माता बन के दिखाओ, एक दो बच्चे की माता बनेंगी, सारे जगत का दुख दर्द नहीं दूर करना है। तो जिसने सारे जगत का दुख दर्द दूर करने का प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, वो ही जगत की अम्बा बन गई, जगदम्बा।
बाबा,
हाँ,
इस सृष्टि में, इस सृष्टि पर तीन भाग जल है और एक भाग पृथ्वी है।
हाँ जी,
तो इसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा? अगर स्थूल में है तो बेहद में भी होना है, सूक्ष्म में भी होना है।
बेहद में जो ब्राह्मणों की सृष्टि है, इस ब्राह्मणों की सृष्टि में ज्ञान जल तीन हिस्सा नहीं है। ज्ञान जल तीन हिस्सा है या नहीं है? और देह अभिमान, देह अभिमान रूपी मिट्टी कितनी है? थोड़ी सी है, चौथाई हिस्सा, 1/4। लेकिन उसके साथ साथ और क्या है? पृथ्वी के साथ साथ और क्या है? है जल तो है ही, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, तो बहुत बड़ा रूप हो जाता है। आकाश तो पृथ्वी से भी ज्यादा है और जल से भी ज्यादा है। उसको कहते हैं द्यावा पृथ्वी, द्यावा माने आकाश, पृथ्वी माने माता, ये माता पिता का रूप है। और
बाबा जापान देश का अर्थ क्या है? बाबा जापान
जापान के चारों तरफ क्या है?
पानी,
पानी है,
जल,
जल से भरा पूरा है। पानी रहना अच्छा है या पानी नदारद होना अच्छा है?
रहना अच्छा है,
रहना
अच्छा।
कहते भी है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मान खुचुन। आदमी पानी वाला अच्छा होता है या निपान आदमी अच्छा होता है? पानी वाला अच्छा होता है।
जल मिला हर मिला,
पानी जीवन है। जल क्या है? जल ही जीवन है। तो जापान वाले लोग समझते हैं कि हमको पानी देने वाला भगवान मिला सबसे पहले। सबसे पहले ज्ञान सूर्य कहाँ उगता है? है
जापान।
और
बाबा
हाँ,
अंत में जब विनाश होगा ना, अंत में जब विनाश होता है ना, तब एक आत्मा आकर एक जन्म के फिर से मर जाती है ना?
नहीं,
लास्ट कोई कोई आत्मा सिर्फ एक ही जन्म लेती है ना?
हाँ,
तो जन्म लेती फिर से मर जाती है ना?
नहीं, पेट में भी मर जाते हैं।
मेरा सवाल ये था कि उसको पुरुषार्थ का समय नहीं मिलता है ना?
नहीं,
मौका भी नहीं।
वो पेट में ही उसको जो कुछ मिलना है सो मिल जाएगा। अभिमन्यु की तरह। और उस आत्मा को भी साथ लेकर के जाना है सूक्ष्म वतन में। कौन ले जाएगा? लास्ट जो आत्मा है उसको भी साथ लेके कौन जाएगा? प्रजापिता। सूक्ष्म वतन में उसे छोड़ते हुए सूक्ष्म वतन की सभी आत्माओं को क्रॉस करते हुए पहले पहुंच जाएगा।
बाबा सूक्ष्म वतन है ही नहीं है, ऐसे बोला ना।
मन की स्टेज तो है, ब्रह्मापुरी मन की स्टेज नहीं है ब्रह्मा की। वो ज्यादा ऊंची स्टेज में नहीं उड़ सकता। वो विष्णुपुरी ब्रह्मा से ऊंची पुरी है या नहीं है? मन की स्टेज है ना। और शंकरपुरी वो ब्रह्मा से भी क्रॉस और विष्णु को भी प्रक्रॉस कर जाती है। ऐसी मानसिक ऊंची स्टेज जो परम धाम के बिल्कुल नजदीक, जब चाहे निराकारी बन जाए और जब चाहे मनन चिंतन मंथन में आ जाए।
साकार, आकार और
निराकार। हाँ जी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी। ब्रह्मा की नहीं बनेगी ऐसी, ब्रह्मा के फॉलोअर्स की भी नहीं बनेगी। और
परम धाम तो है ही है ना बाबा,
है
परम धाम तो है ही है,
परम धाम के बिल्कुल नजदीक शंकर, शंकरपुरी, ज्यादा अंतर नहीं है। और ओम शांति।